यह आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में आज से 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर से ही वोट डालने की सुविधा शुरू। उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि विशेष अदालत ने एक बार प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो निदेशालय किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। सरकार ने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं की कीमतों में कटौती की है। आईआईटी दिल्ली ने आज से हाई स्कूल की छात्राओं के लिए स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राजधानी में आज से 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर से ही वोट डालने की सुविधा शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग ने पहली बार ये सुविधा शुरू की है।
चुनावी महापर्व में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत ऐसे मतदाता जिनकी उम्र काफी अधिक है और वे लोग जो दिव्यांग हैं, उनके लिए चुनाव आयोग उनके घर जाकर वोट डालने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। दिल्ली में इस श्रेणी में 1,75,000 से अधिक मतदाता है, जिसमे 97,000 बुजुर्ग और 76,000 दिव्यांग है। हालांकि 5,472 लोगों ने ही घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान केंद्र तक लाने और वापस पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट के लिए चुनाव छठे चरण में 25 मई को होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और दिल्ली के सांसद उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज सुबह की सैर पर निकले लोगों से बातचीत की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने केशवपुरम के हटौदा राम पार्क में जनसंपर्क किया और प्रचार पोस्टर वितरित किए। उत्तर पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया ने रोहिणी सेक्टर 16 के एक पार्क में लोगों से बातचीत की। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अजमल खां पार्क करोल बाग में लोगों से संपर्क किया। दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी ने कालकाजी में जनसभा को संबोधित किया। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने आज हरिनगर, नजफगढ़, द्वारका, विकासपुरी और मटियाला में जनसभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा उठाया। वहीं पूर्वी दिल्ली से आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने कृष्णानगर विधानसभा में रोड शो किया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने आज रोहिणी में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा रिठाला में जनसभा को संबोधित किया। वर्तमान लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में 45 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन आयोग ने आज एक बयान में बताया है कि आम चुनाव 2024 के पहले 4 चरणों में सामूहिक मतदान 66.95% रहा। मतदान का उच्च प्रतिशत भारतीय मतदाताओं की ओर से दुनिया के लिए एक संदेश है। आयोग ने मतदाताओं का आह्वान किया कि वे शेष चरणों में बड़ी संख्या में वोट डालें। आयोग ने इस प्रयास में प्रसिद्ध हस्तियों के साथ ही सार्वजनिक और निजी संगठनों को भी शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज आप पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री आवास में हुए कथित हमले के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इस घटना को लेकर केजरीवाल को पछतावा नहीं है, क्योंकि वे और आईएनडीआई गठबंधन के विपक्षी नेताओं ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल के कहने पर ही उनके निजी सहायक ने मारपीट की और ये चिंता का विषय है कि श्री केजरीवाल को जिस व्यक्ति की जांच करानी चाहिए वो उनके साथ घूम रहा है। श्री भाटिया ने कहा कि स्वाति मालीवाल विपक्षी दल की नेता हैं, लेकिन भाजपा उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और अगर वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कथित दुर्व्यवहार मामले में दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। आज दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे और उनसे पूछताछ की। आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव ने इस महीने की 13 तारीख को स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने वैभव कुमार को कल उसके सामने पेश होने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यदि विशेष अदालत ने एक बार प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो निदेशालय किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि अपराध का संज्ञान लिए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय और उसके अधिकारियों को धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलई की धारा 19 के अंतर्गत किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं देता। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय आरोपी की हिरासत चाहता है तो उसे विशेष अनुरोध में आवेदन करना होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय एक ही अपराध के बारे में अतिरिक्त जांच करना चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसे पहले से दर्ज शिकायत में आरोपी नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इसके लिए धारा 19 की शर्तों को पूरा करना होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और आकाशवाणी समाचार सेवा की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार भी ग्रहण किया। 1991 बैच की आईआईएस अधिकारी श्रीमती चक्रवर्ती ने पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में काम किया है। 3 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पीएस के रूप में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी काम किया है। सरकार ने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं की कीमतों में कटौती की है। इनमें मधुमेह, हृदय और लीवर की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आवश्यक दवाओं को सुलभ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न दवाओं की कम कीमत की जानकारी तत्काल प्रभाव से डीलरों और थोक वितरकों को दें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अवैध रूप से रुपयों के हस्तांतरण के आरोप में पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली स्थित हापुड़ शाखा के एक हेड कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा एक निजी व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। हेड कैशियर पर आरोप है कि उसने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लगभग 5 करोड़ रुपए अवैध रूप से भोपाल स्थित अलग अलग खातों में हस्तांतरित किए। सीबीआई ने संदर्भ में आरोपियों के घर पर तलाशी ली जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही शराब की तस्करी पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक आरोपी को द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 200 कार्टून अवैध शराब जब्त की जिसमें 10,000 बोतलें थीं। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाला एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में यात्रियों को कम समय में विशेष दर्शन करवाने के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगले महीने से जम्मू से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करेगा।
इस सेवा का लाभ लेने वाले दर्शनार्थियों को 2.5 किलोमीटर पहले पंछी हेलीपैड रिपीट इस सेवा का लाभ लेने वाले दर्शनार्थियों को 2.5 किलोमीटर पहले पंछी हेलीपैड पर उतारा जाएगा और विशेष दर्शन करवाए जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने दो प्रकार के यात्रा पैकेज शुरू किए हैं। पहले पैकेज के अंतर्गत एक ही दिन में वापसी होगी, इसका मूल्य 35,000 रूपये है। दूसरे पैकेज के अंतर्गत अगले दिन वापसी होगी, जिसका मूल्य 50,000 रूपये प्रति व्यक्ति है। वर्तमान में हेलीकॉप्टर सेवा कटरा से सांझी छत के बीच जारी है, जिसका एक तरफ का किराया 2,100 रूपये प्रति व्यक्ति है। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
उत्तराखंड में तीर्थयात्री बिना पंजीकरण के चार धाम यात्रा नहीं कर सकते। नांको और अन्य स्थानों पर सख्ती से जांच की जाएगी और बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि अपने अपने राज्य के तीर्थयात्रियों को चारधाम यात्रा की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें।
ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से ना आए।
इस साल चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। जानकारी के अभाव में अनेक तीर्थयात्री बिना पंजीकरण कराए उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के इस महीने की 31 तारीख तक केरल पहुंचने की संभावना है। पिछले साल ये 8 जून को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की प्रगति केरल में मॉनसून की शुरूआत से होती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि परिस्थितियां अनुकूल हैं और मानसून के समय पर पहुंचने की संभावना है।
जो आंकड़ा आया है कि इस बरस दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होगा केरल में जो है वो 31 मई 2024 है और हम यूज करते हैं इसकी तारीख निर्धारण के लिए, उसमें प्लस माइनस 4 डे यानी 28 मई से 3 जून तक तभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून केरल छू सकता है 2024 मानसून जो होगा। और इसके पहले हम लोग जो दक्षिण अंडमान का जो समुद्र है वहाँ 19 मई राउंड आएगा, ये ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं।
और अब दिल्ली का मौसम। राजधानी में आज तेज धूप रही और गर्म हवाओं के चलने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में चल रही है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर नई तकनीक के क्षेत्र में अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की सहायता से इस वर्ष सितंबर में फ्रांस के लियोन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थियों ने अपने विचार आकाशवाणी के साथ व्यक्त किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में आज से 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर से ही वोट डालने की सुविधा शुरू। उच्चतम न्यायालय ने कहा यदि विशेष अदालत ने एक बार प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो निदेशालय किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं की कीमतों में कटौती की है। आईआईटी दिल्ली ने आज से हाईस्कूल की छात्राओं के लिए स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरूआत की। और दिल्ली पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।